नमस्कार, आज जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष अवसर है।
नमस्कार।
हाँ
बिल्कुल,
और इसी संदर्भ में हम आज पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही मतलब गहरे उद्बोधन पर बात करेंगे।
हाँ,
जिसका शीर्षक है संभवामी युगे युगे।
जी,
तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान का वो प्रसिद्ध वचन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य,
जी,
आखिर इसका मतलब क्या है और आज ये कैसे प्रासंगिक है।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव इसी को समझाते हैं। हाँ। वे कहते हैं कि ये भगवान की एक तरह की प्रतिज्ञा है,
एक वादा।
वादा
कैसा? वादा
सृष्टि में, मतलब इस दुनिया में एक संतुलन बनाए रखने का वादा, कि जब जब धर्म की हानि होगी, मतलब अच्छाई कमजोर पड़ेगी और अधर्म यानी बुराई बढ़ेगी,
तब
तब तब वे उस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने आएंगे।
अच्छा।
और ये सिर्फ बाहरी दुनिया का संतुलन नहीं है, ये हमारे अंदर का, व्यक्ति के आंतरिक जगत का संतुलन भी है।
आंतरिक जगत का,
ये बात थोड़ी और समझाएंगे। पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं इस पर? हाँ, वे बताते हैं कि मनुष्य के भीतर ना दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी।
अच्छा, देव और असुर वाली।
हाँ बिल्कुल, एक जो ऊपर उठाती है और दूसरी जो बिना किसी खास कोशिश के ही पतन की ओर, नीचे की ओर ले जाती है।
जैसे?
कोई उदाहरण,
जैसे पानी ढलान की ओर बहता है, उसे कोई धक्का नहीं देना पड़ता।
हाँ, सही बात है,
बस वैसे ही।
तो जब समाज में या किसी व्यक्ति के अंदर ये नकारात्मकता, ये आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब वो संतुलन बिगड़ने लगता है।
ओ, तो यहीं पर वो सफाई वाली बात आती है जिसकी आप बात कर रहे थे।
बिल्कुल, यहीं पर। जैसे हम अपने शरीर को, कपड़ों को, घर को साफ रखते हैं ना।
हाँ, रोज ही रखते हैं।
वैसे ही अपने अंदर के जीवन से और बाहरी सामाजिक जीवन से भी इस अनाचार, इस गंदगी को, मलिनता को हटाने का संघर्ष, वो बहुत जरूरी है।
संघर्ष?
हाँ संघर्ष। अगर ये संघर्ष, ये सफाई की कोशिश धीमी पड़ जाए या रुक जाए, तो फिर वो दुष्प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं।
तो ये संघर्ष ही कुंजी है एक तरह से।
जी, पूज्य गुरुदेव के अनुसार तो यही जीवन का आधार है।
और एक बहुत ही दिलचस्प बात गुरुदेव कहते हैं अवतार के बारे में, कि अवतार का मतलब सिर्फ कृष्ण या राम जैसे, मतलब जो प्रसिद्ध रूप है वही नहीं है।
सही पकड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इतिहास में देखिए कितने सारे महामानव हुए, महर्षि हुए, लोक सेवक हुए।
जैसे कि?
जैसे मूसा, ईसा, बुद्ध, मोहम्मद साहब। फिर भारत में देखें तो समर्थ गुरु रामदास, शंकराचार्य।
हाँ हाँ,
ये सभी जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, मुश्किल समय में रास्ता दिखाया, उन्हें भी अवतार का अंश माना जा सकता है।
अच्छा।
यहाँ तक के गुरुदेव कहते हैं हमारे अपने भीतर का साहस,
हमारे भीतर का,
हाँ, वो हिम्मत जो हमें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकती है या सही काम करने की प्रेरणा देती है, वो भी एक तरह से अंदर ईश्वर के अवतार का ही उदय है।
वाह, ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। मतलब हम सबके अंदर वो शक्ति है।
बिल्कुल, और ये बात हमें सच्ची भक्ति के अर्थ की ओर ले जाती है, कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है।
तो फिर क्या है?
पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं समर्थ गुरु रामदास का। वो विवाह मंडप से उठकर चले गए थे। क्यों?
हाँ सुना है मैंने, क्यों?
क्योंकि उन्होंने समय की पुकार सुनी, ईश्वर की पुकार सुनी, और फिर देखिए उन्होंने शिवाजी महाराज जैसे युग पुरुष को प्रेरणा दी।
और शंकराचार्य का भी नाम लिया था आपने।
हाँ, शंकराचार्य जी, माँ की सांसारिक इच्छाएं थी, लेकिन उन्होंने देश की जरूरत को समझा, नास्तिकता का खंडन किया, पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से एक धागे में पिरोया।
मतलब इन सब ने भगवान की पुकार सुनी, जो आदर्शों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में या समय की मांग के रूप में आती है।
बिल्कुल सही, उन्होंने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर उस पुकार का जवाब दिया, यही सच्ची भक्ति है।
और ये पुकार, ये जो बदलाव की जरूरत है, ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती ना। गुरुदेव हवा का रूपक इस्तेमाल करते हैं शायद।
हाँ, हवा का बहुत सुंदर रूपक है, जैसे गांधी जी आए, बुद्ध आए, कृष्ण, राम, ये सब एक हवा की तरह थे।
हवा की तरह मतलब?
हाँ, मतलब उन्होंने अकेले ही सब कुछ नहीं बदल दिया, उन्होंने एक माहौल बनाया, एक आंदोलन खड़ा किया, लाखों लोगों को प्रेरणा दी, जोड़ा अपने साथ।
हाँ, जैसे कृष्ण को भी तो महाभारत युद्ध के लिए पांडवों की सेनाओं की जरूरत पड़ी थी।
बिल्कुल, और राम जी को वानर सेना की। तो ये जो सामूहिक शक्ति है ना, ये हम की भावना असल में परिवर्तन वही लाती है।
ये बात तो है।
इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के अवतारों की जो लीलाएं हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वे लोक शिक्षण हैं।
लोक शिक्षण मतलब लोगों को सिखाने का तरीका।
हाँ, अपने आचरण से सिखाना। कृष्ण जन्म का ही उदाहरण देखिए, कैसी विषम परिस्थितियां थी, जेल, अंधेरी रात, यमुना में बाढ़, चारों तरफ खतरा।
हाँ, बहुत कठिन समय था।
लेकिन पिता वसुदेव का साहस देखिए, उनका संकल्प देखिए, वो उन सब मुश्किलों के बावजूद कृष्ण को सुरक्षित जगह ले गए।
तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
यही कि मनुष्य की अपनी हिम्मत, उसका अपना संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। वो असंभव को भी संभव बना सकती है, परिस्थितियों को चीर कर रास्ता निकाल सकती है।
और यहाँ शायद संघर्ष का महत्व भी जुड़ता है, गुरुदेव इस पे भी काफी जोर देते हैं।
हाँ, बहुत ज्यादा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं।
हाँ, सोचते तो हैं।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये कठिनाइयां, ये मुसीबतें हमें निखारने के लिए, हमें गढ़ने के लिए जरूरी हैं। जैसे पत्थर पर घिसे बिना चाकू में धार नहीं आती।
सही बात है।
वैसे ही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमें संयम सिखाता है, हमारे अंदर बहादुरी पैदा करता है। जो आराम की जिंदगी होती है ना, वो अक्सर इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। तो संक्षेप में कहूं तो पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन का सार यही है कि भगवान की वो प्रतिज्ञा संभवामी युगे युगे, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के रूप में साकार होने की बात नहीं है।
अच्छा, तो फिर?
ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये हमारे अंदर साहस और संकल्प के रूप में जन्म लेती है।
हाँ।
समाज में सकारात्मक परिवर्तन की हवा बनकर बहती है और मुश्किलों से जूझकर मजबूत बनने की प्रेरणा के रूप में भी सामने आती है।
वास्तव में ये तो बहुत गहरा चिंतन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने अंदर, अपने आसपास उस ईश्वरीय पुकार को सुन पा रहे हैं।
बिल्कुल।
क्या हम सिर्फ परिस्थितियों के दास बनकर रह जाते हैं, या फिर वसुदेव की तरह अपने संकल्प से, अपनी हिम्मत से रास्ता बनाने का साहस रखते हैं?
यही प्रश्न है।
शायद आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर यही सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है हम सबके लिए।